वाइल एग्जामिनिंग केस ऑफ लेग अल्सर, अगर हम शॉर्ट केस के लिए करते हैं और लॉन्ग केस के लिए करते हैं, ऑल्दो द स्टेप्स विल बी द सेम, लेकिन लॉन्ग केस में चूँकि हमारे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इस वजह से उसमें हमने सारे सिस्टम्स को अच्छी तरह से एग्जामिन करना होता है। अदरवाइज शॉर्ट केस में यूजुअली हम ये करते हैं कि अल्सर की कंप्लीट एग्जामिनेशन के बाद हमने सिर्फ रेलेवेंट एग्जामिनेशन करनी होती है, उसमें हमारे पास सब कुछ एग्जामिन करने का टाइम नहीं होता। सो, जो बेसिक लीजन के एग्जामिनेशन के स्टेप्स हैं वो तो हम शॉर्ट केस में ज़रूर करेंगे, लेकिन बाकी की जो डिटेल्ड चीज़ें अभी हम जो लॉन्ग केस के लिए डिस्कस करते हैं उसमें से सब कुछ हमने एग्ज़ामिन नहीं करना होता। तो लॉन्ग केस में तो सबसे पहले एग्जामिनेशन हम स्टार्ट ही करते हैं फ्रॉम द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इन विच वी टेक द वाइटल्स एंड देन वी डू द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। देन क्यूटेनियस एग्जामिनेशन में हमने हम दो तरह से इसको एग्ज़ामिन कर सकते हैं। या तो आप उसको जैसे रूल ऑफ सेवन से हम स्टार्ट करते हैं, तो हमने अपर लिम्स से स्टार्ट किया, देन वी मूव टू द हेड, नेक, ट्रंक एंड देन वी कम टू द लोअर लिम्स। और वी कैन डू इस कि सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि जहाँ पे लीजन है, चाहे वो लोअर लिम्स पे, आप लोअर लिम्स से अपनी क्यूटेनियस एग्जामिनेशन स्टार्ट करें और फिर उसके बाद आप उसको बाकी की जो न्यूको क्यूटेनियस एग्जामिनेशन उसको कम्प्लीट कर लें। तो जो लोअर लिम्स के जो भी लीजन के एग्जामिनेशन के स्टेप्स होंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में वी चेक द वाइटल्स एंड देन फॉर द साइनोसिस, क्लबिंग, पेलोर, जॉइंटिस, लिम्फ नोड्स पैल्पेशन, थायरॉइड एग्जामिनेशन, पीडल एडिमा, सैक्रल एडिमा। देन वी कम टू द एग्जामिनेशन ऑफ एन अल्सर, जिसमें पहले इंस्पेक्शन एंड देन पैल्पेशन। इंस्पेक्शन फर्स्ट विद द नेकेड आई टू लुक फॉर द नंबर ऑफ द लीजन, द एक्सटेंट ऑफ द लीजन, अप्रॉक्सीमेट साइज, व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ द लीजन एंड द सराउंडिंग स्किन। देन वी आर गोइंग टू लुक फॉर द विद द हेल्प ऑफ अ टॉर्च एंड देन विद अ हैंड लेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इंस्पेक्शन में जो हमने देखनी है, दैट इज़ द साइट ऑफ द अल्सर, जिसको देख के ही हम अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वट कुड बी द कॉज। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द अल्सर इज़ प्रेजेंट इन द गेटर्स एरिया ऑन द अराउंड द मीडियल मेल्यूलस, देन वी आर गोइंग टू थिंक मोर अबाउट द वीनस अल्सर। द एटर गेटर एरिया मेनली इज़ द एरिया विच इज़ प्रेजेंट इन द लोअर वन थर्ड ऑफ द मीडियल साइड ऑफ द लेग, एंड इट इज़ स्पेसिफिक, इट इज़ नॉट वेरी मच स्पेसिफिक, बट वी कैन से दैट इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द वीनस अल्सर। Then if the ulcer is located on the dorsum of the foot, on the dorsolateral part of the leg, on the toes, heels or over the Achilles tendon, then we will think more about the arterial ulcer. Similarly, if the ulcer is present on the pressure areas of the feet, such as the ball of the first toe or the fifth toe or the heel, then we will think more about the neuropathic ulcer. Then first we will inspect the approximate size of the ulcer. What is the shape of the ulcer? It is round, oval, irregular, serpiginous, or what is the approximate size? Which is the what is the size of a largest ulcer if multiple ulcers are present, and the size of the smallest ulcer? Usually we have seen that the venous ulcers are larger than the arterial ulcer, whereas in the neuropathic one we can have both the smaller and the larger ulcers. The shape. Looking at the margins, whether regular, irregular, what is the appearance, whether they are punched out, rolling margins, base, सब कुछ हमने जो characteristic features हमने ulcer में देखने होते हैं, जिसमें हमारे पास floor है, क्योंकि base तो हमें नज़र नहीं आ रही होती है, floor of the ulcer, edges, margins and the surrounding skin, ये सब कुछ हमने inspection पे देख लिया। अब इन्हीं findings को हमने confirm करना है by a palpation। सबसे पहले अपने ग्लव्स पहने और अपने अल्सर को अच्छी तरह से एग्ज़ामिन किया। टेम्परेचर हम क्योंकि ग्लव्स के साथ नहीं कर सकते, इसलिए वो आपने एंड पे करना होगा। इसमें आपने पैल्पेशन किया, जिसमें आपने टेंडरनेस देखा, और फिर उसके बाद आपने पिंच एंड स्क्वीज करके देखना है अल्सर को। जब हम पिंच करेंगे तो हमने ये ऑब्जर्व करना है कि उस अल्सर के बेस में से क्या एग्ज्यूट होता है, वेदर इट इज़ पस, सीरोसिंगुइनस डिस्चार्ज, ब्लड। It also indicates or give a clue about the cause. Tendinitis should be checked because the arterial ulcer, pyoderma gangrenosum, vasculitic ulcers, vasculopathic ulcer, and if the malignant ulcers are, they have a superadded infection, they may show tendinitis. Then we will move the ulcer in the two directions to look for the adherence to the underlying structures. बेस को भी इसी तरह हमने पैल्पेट करके ही फील करना है कि बेस जो है वो उसकी अंडरलाइंग क्या हो सकती है और क्या उसकी एडहेरेंस है टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स लाइक द बोन टेंडन और नॉट. फ्लोर ऑफ द अल्सर को आपने इंस्पेक्शन पे भी देखा और पैल्पेशन पे भी आप उसको कंफर्म करेंगे. फ्लोर और बेस के बीच में डिफरेंस ये होता है कि फ्लोर इज दैट पार्ट ऑफ द अल्सर विच इज़ विजिबल टू द नेकेड आई, वेयर इज द बेस इज द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स ओवर विच द अल्सर इज प्लेस्ड और इट इज लाइंग ऑन अ मसल और अ बोन और अ टेंडन वॉट एवर इट इज. सो द विजिबल पार्ट ऑफ द अल्सर दैट इज द फ्लोर, उसमें हमने ऑब्जर्व करना है कि हमें क्या नज़र आ रहा है, वेदर इट इज़ अ ग्रैनुलेशन टिश्यू. फिर ग्रैनुलेशन टिश्यू का कलर, इफ़ इट इज़ अ वाइट ग्रैनुलेशन टिश्यू दैन इट मीन्स इट इज़ अ स्लो हीलिंग अल्सर, इसकी जो ब्लड सप्लाई वो इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए इट विल बी अ स्लो हीलिंग अल्सर. अगर वो रेड ग्रैनुलेशन टिश्यू होगा तो वो हेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू, मीन्स उसकी हीलिंग अच्छी हो रही है. देन इफ इट वेदर देर इज़ अ प्यूरुलेंट डिस्चार्ज विच मीन्स दैट सुपर एडिट इन्फेक्शन इज प्रेजेंट, तो अगर हमें डिस्चार्ज मिलता है सो वी आर गोइंग टू कलेक्ट इट विद अ गॉस पीस, वी आर गोइंग टू लुक एट द अल्सर एंड वहीं से ही हम उसका एक स्वाब भी ले सकते हैं कल्चर के लिए. देन नेक्रोटिक स्लफ हो सकता है, अंडरलाइंग बेस बिल्कुल ब्लैकिश कलर की हो सकती है, जो भी उसकी फाइंडिंग्स होंगे वो आपने ऑब्जर्व कर लेना. सीरोसिंग्विनस डिस्चार्ज इज़ यूजली सीन इन ट्यूबरकुलोसिस एंड एसएससी. देन फिर उसके बाद अपने बेस को मैंने बताया था कि पैल्पेट करना है बाय मूविंग इन टू डायरेक्शंस, और उसके अलावा आपने डेप्थ को, जैसे हम स्केल से अल्सर की मेजरमेंट्स लेते हैं कि क्या डायमीटर है, इसी तरह उसकी जो डेप्थ है उसको भी हम मेजर करना है विद अ स्केल. आइडियली तो ये करना चाहिए कि यू यूज़ अ डिस्पोजेबल स्केल इन द एग्ज़ाम एंड व्हेन यू आर डन यू जस्ट थ्रो इट अवे, आपसे बाहर से अपने मेजरमेंट्स लेके उसको नोट डाउन कर लें. देन फिर वी कम टू द मार्जिनस, सॉरी एजेस. द एजेस ऑफ द अल्सर इज़ दैट पार्ट ऑफ द अल्सर विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोर एंड द मार्जिनस. डिफरेंट टाइप ऑफ द एजेस कैन बी प्रेजेंट विच इंडिकेट्स द कॉज. फॉर एग्जाम्पल स्लोपिंग एजेस विच आर यूजली प्रेजेंट इन द वीनस अल्सर एंड द हीलिंग अल्सर्स. Punched out ulcer, punched out edges, which are seen in arterial ulcer, neuropathic ulcers, and the ulcer in syphilis. Rolled edges seen in BCC, everted in SCC, and undermined in TB and pyoderma gangrenosum. Then margins. The margin is the line of demarcation between the ulcer and the normal skin. We will look at the margins, at what is the color of the margin, whether it is pale, erythematous, or violaceous in appearance. Then we are going to examine the surrounding skin, that whether surrounding skin mein koi cellulitis wali features hain, erythema hai, worm hai, tenderness hai, ya phir uske andar koi venous eczema wali findings hai, yani usme hame काफ़ी पिगमेंट्री चेंजेस नज़र आ रहे हैं. लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस के लिए हमें पिंच करके देखना है. देन उसके अलावा उसके अंदर कोई ऊजिंग हो रही है या नहीं, कोई एक्जिमेटस फाइंडिंग्स हैं वीनस एक्जिमा से रिलेटेड. ट्रॉफिक चेंजेस में हमने ये देखना है कि सराउंडिंग स्किन, अगर आर्टीरियल अल्सर के, अगर आर्टीरियल अल्सर है तो सराउंडिंग स्किन के अंदर हमें क्या मिलेगा, कोल्डनेस. द स्किन विल बी ड्राई, स्केली, फिजर्ड, it will be cold, hairless, shiny, and the distal part of the limbs will be cold, the nails will be dry, thickened, discolored nails. So these are collectively known as atrophic changes which is seen in an arterial ulcer. Compared to this, venous ulcer में हमने देखा है ज़्यादातर edema ज़्यादा होता है, dirty ulcer होता है, जो surrounding skin होती है वो भी ज़्यादा discolored होती है, उसके अंदर ज़्यादा हमें dusky सा erythema नज़र आ रहा होगा. तो जो सराउंडिंग स्किन फाइंडिंग्स होगी ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उसकी कॉज की तरफ एक हमें हिंट या क्लू देती है. उसके अलावा अगर हमें अल्सर्स के साथ कुछ ही स्कारिंग मिल रही है ऑफ द प्रीवियस लेजन, सो वी लुक फॉर द टाइप ऑफ द स्कारिंग प्रेजेंट, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्कार, वेदर इट इज़ पोर्सिलिन वाइट इन कलर विद सराउंडिंग टेलिंजिक्टेजिया एंड परप्यूरा, तो इट कैन बी एट्रोफिक ब्लांच, और इफ इट इज़ अ क्रिब्रीफॉर्म स्कारिंग इट मे शो पाइडर्मा गैंग्रेनोजम. इफ इट इज़ एसोसिएटेड विद एनी जॉइंट डिफॉर्मिटी, कैलस फॉर्मेशन, देन इट मे शो ट्यूबोकुलोसिस। उसके अलावा जब हमने लीजन को एग्ज़ामिन किया, सराउंडिंग स्किन को एग्ज़ामिन किया, तो उसमें शॉर्ट केस में भी और लॉन्ग केस में भी हमने पेरिफेरल पल्सेस को अच्छी तरह से पैल्पेट करना है, एडीमा, सेंसेशंस, वेब स्पेसेस, नेल्स, डॉर्सल प्लांटर एस्पेक्ट को अच्छी तरह से एग्ज़ामिन करना है, पोस्टीरियर काफ को अच्छी तरह से एग्ज़ामिन करना है टू लुक फॉर एनी फाइंडिंग। यहाँ पे क्योंकि हमने वेरिकोज वेन्स के लिए भी पेशेंट को देखना होता है, तो वो एंड में जब हम पेशेंट को वॉक करवाएंगे तो उसी में ही हमने पेशेंट को एक मिनट के लिए खड़ा करके देखना है कि वेरिकोसिटीज़ विजिबल हैं या नहीं। जब हमने लोअर लिम्स को ही एग्ज़ामिन किया क्यूटेनियस के लिए, उसी में ही हमने देखना है कि कोई लेविडो रेटिकुलरिस या कोई लेविडॉइड पैटर्न तो नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने एक्सटेंट देखना है, नंबर ऑफ अल्सर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द लोअर लिम, ये सब कुछ हमने अच्छी तरह से देखना है। जहाँ पे हम न्यूरोपैथिक अल्सर्स के लिए एग्ज़ामिन कर रहे होंगे, तो उसमें हमने उस अल्सर के सराउंडिंग भी सेंसेशंस चेक करनी है, अपनी फिंगर को ऐसे प्रेस करके देखना है अराउंड द लीजन के वहाँ पे कोई थिकेंड नर्व तो नहीं मिल रही है, पेरिफेरल पल्सेस और पावर टोन रिफ्लेक्सेस चेक करने के अलावा हमने पेरिफेरल नर्व्स की एग्जामिनेशन भी करनी है इन अ लॉन्ग केस। तो यू कैन डू इट एज अ पार्ट ऑफ अ अल्सर और यू कैन डू इट इन द एंड, लेकिन अगर शॉर्ट केस है तो ऑब्वियसली हम ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद वील मूव टू द अदर पार्ट्स ऑफ द स्किन। लेकिन चूंकि लॉन्ग केस में हम सब कुछ सिस्टमिक लेके चल रहे होते हैं, तो जब हमने न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करनी है तो उसमें भी हम ये एग्जामिनेशन अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सेंसेशन, पावर, रिफ्लेक्सेस और पेरिफेरल नर्व्स की पल्पेशन है, लेकिन ये पॉइंट्स मिस नहीं होने चाहिए। उसके बाद जब हम अल्सर को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हमने कहा कि पीडल एडीमा हम देखेंगे, पल्सेस के लिए देखेंगे। तो जब हमने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन किया था, उसमें तो हमने रेडियल पल्स चेक की थी, रेडियल डिले, रेडियो फेमोरल डिले के लिए देखना है। लेकिन अगर अल्सर लोअर लिम्ब पे है, तो फिर हमने डॉर्सल स्पीडस आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी को पैल्पेट करके ज़रूर देखना है। एक्टिव पैसिव मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स शुड बी डन एंड एनी डिफॉर्मिटी प्रेजेंट इन द पॉइंट शुड बी नोटेड डाउन। इंपॉर्टेंट मेन्यूवर्स इसमें यह होगा कि अल्सर चार्टिंग, कैपिलरी रीफिल एंड ABPI शुड नॉट बी मिस्ड। देन पैल्पेशन ऑफ द इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स एंड ऑल ऑफ द लिम्फ नोड्स इज इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ अ लेग अल्सर, क्योंकि कॉजेज इसकी जब हमने लोअर लेग लिम्फ के लिए इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स चेक किए, तो बाकी के जो लिम्फ नोड्स हैं वो हम मैलिग्नेंसी के लिए, टीबी के लिए ज़रूर हमने देखना है कि उनके अंदर लिम्फेडेनोपैथी तो नहीं। फिर उसके बाद जब हमने सिस्टमिक एग्जामिनेशन में आना है, तो सिस्टमिक एग्जामिनेशन से पहले इनफैक्ट हमने सारे म्यूकोसल सर्फेसिस को अच्छी तरह से एग्ज़ामिन करना है, और उसके अलावा हमने सिस्टमिक एग्जामिनेशन में चेस्ट एस्कल्टेशन फॉर टीबी, कार्डिक एस्कल्टेशन एंड एब्डोमिनल पैल्पेशन फॉर लिवर एंड स्प्लीन, ओवरऑल एब्डोमिनल टेंडरनेस, जेनिटेलिया की परमिशन ज़रूर लेनी है म्यूकोसल में भी और वैसे भी अगर हमने क्रोन्स डिजीज़ के लिए हमने एग्जामिन करना है पेशेंट को। फिर जब हमने बैक से क्यूटेनियस एग्जामिनेशन करनी है, तो उसमें हमने स्पाइनल टेंडरनेस भी चेक करनी है और स्कोलायोसिस के लिए भी अपने हाथों को ऐसे अराउंड द स्पाइन हमने पैल्पेट करके देखना है कि स्पाइन की जो वो है, इट इज़ इन द सेंटर एंड देयर इज नो लॉर्डोसिस और स्कोलायोसिस प्रेजेंट। देन उसके अलावा एंड में पेशेंट को हमने वॉक के लिए खड़ा करके जब देखना है, तो उसमें वील आस्क द पेशेंट टू स्टैंड फॉर 1 मिनट एंड लुक फॉर एनी वेरिकोसिटीज, वील चेक द गेट ऑफ द पेशेंट एंड से पे थैंक्स टू द पेशेंट। दिस कंप्लीट द एग्जामिनेशन फॉर अ लेग अल्सर।